Hare Krishna. तो इस परिक्रमा का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं. अधिक से अधिक माला करने का प्रयास करें. 16 पे अब रुकिए मत, ज्यादा भी हो तो ज्यादा करते रहिए. तो बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, क्योंकि जिह्वा जो है सारे इंद्रियों में से सबसे कठिन है उसको वश में करना. तो प्रवृत्ति हमेशा रहती है, क्योंकि हम सबके साथ में हैं तो कुछ न कुछ बातचीत हम करते हैं. तो बिल्कुल जो आवश्यक बातें हैं वही सेवा के लिए, हमारी परिक्रमा के लिए, अन्यथा केवल हरिनाम. जो गोवर्धन परिक्रमा एक प्रथा है जो कृष्ण ने शुरू किया था. लीला जो है गोवर्धन धारण करने वाली कथा वो बाद में सुनाएंगे. तो आप सब तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को इंद्र यज्ञ करने से रोका और उनको कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो और जितने भी सामग्री आपने तैयार किए हैं इंद्रदेव के लिए उन गोवर्धन को अर्पण करो. सारा भोग अनुष्ठान संपन्न हो गया. तो चर्चा हम अणियोर में करेंगे. एक अन्नकूट क्षेत्र है जहां पर सारे सामग्री अर्पण की गई गोवर्धन को. उसके बाद आरती हुई गोवर्धन की और फिर सारे ब्रजवासी मिलकर उन्होंने सब ने गोवर्धन की परिक्रमा की. थोड़े थे बच्चे, थे बूढ़े, थे थोड़ी महिलाएं थी, वो सब बैलगाड़ी पर बैठे गए, बाकी सब पैदल गए. तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे गोवर्धन की परिक्रमा सबको कराई और खुद भी उन्होंने किया. महाप्रभु जब यहां पर आए थे उन्होंने भी गोवर्धन की परिक्रमा की. ऐसे विशेष करके सब ने किया, किन विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो कि यहां पर राधा कुंड में और यहां मानसी गंगा में निवास करते थे, वो तो प्रति दिवस प्रतिदिन किया करते थे गोवर्धन की परिक्रमा. गोवर्धन की परिक्रमा वैसे 23 किलोमीटर की है. 23 किलोमीटर मतलब 14 मील के करीब. तन गोस्वामी लंबी परिक्रमा करते थे, किलोमीटर न होकर करीब करीब 40 किलोमीटर की थी और वो प्रतिदिन किया करते थे. पर करते हैं तो वापस जाके फिर 2 दिन सो जाते हैं. हमारे कलयुग का भी आधुनिक समय का शरीर है, परंतु सनातन गोस्वामी रोज किया करते थे. यहाँ के आज भी उनके चिन्हों में चलने वाले कई भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन करते हैं परिक्रमा. ऐसे भी कई भक्त साधु हैं जो दिन में 2 बार करते हैं हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा. के बाद भी कई अन्यों ने परिक्रमा की थी. यहाँ पर गोस्वामी रहते थे, उनका गुफा पास में, वो भी किया करते थे. उन्होंने भी नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को गोवर्धन की परिक्रमा कराई. जितने भी बंगाल से वैष्णव आते उनको भी वो परिक्रमा कराते. तो ऐसे ये वैष्णव परंपरा है और जितने भी वैष्णव आते हैं ब्रज में वो प्रयास अवश्य करते हैं कि अन्य जगहों को भले वो दर्शन न करें लेकिन गोवर्धन परिक्रमा अवश्य वो करना चाहते हैं. हालांकि गोवर्धन परिक्रमा में सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट होता है, फिर भी अवश्य वो करते हैं. तो इसलिए इस भाव से हमें ये परिक्रमा करनी चाहिए कि हम महान आचार्यों के और भगवान के परिचिन्ह में चल रहे हैं. अब जिस स्थान में हम यहाँ बैठे हैं उसको श्याम कुटीर कहते हैं, है जिसको रत्न कुंड कहते हैं और ये है रत्न सिंहासन. यहाँ पर अब तो सिंहासन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर श्रीमती राधा रानी बैठा करती थी, पतियों से घिरी हुई रहती थी. तो ये उनका बैठने का स्थान था श्रीमती राधा रानी का और पूरी तरह से रत्नों से बनाया हुआ था ये, इसलिए रत्न सिंहासन कहते हैं और इस कुंड को भी इसलिए रत्न कुंड कहते हैं. और पास में ही एक चौखट है जहाँ जिसको रास स्थली कहते हैं, क्योंकि उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यहाँ भी रास लीला की थी। श्याम कुटीर और पास में श्याम वन, सुंदर वन है। अभी भी थोड़ा कुछ हम समझ पाते हैं कि उन दिनों कैसे हुआ होगा कृष्ण के समय, अभी भी कितना शांत और रम्य है ये वातावरण, तो कृष्ण भगवान के समय और कितना सुंदर हुआ होगा। हमें और एक लीला हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूर नाम के एक असुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर गोपियों के साथ में आए और यहाँ पे कई लीलाएं चल रही थी। उस समय पास में यहाँ पर शंखचूर नाम का एक असुर आया। वो वैसे कुबेर का रिश्तेदार था। आप जानते हैं कि ये बंगलों को छेड़े नहीं, उनके क्षेत्र में आए हैं ना, तो बोल रहे हैं ये लोग कौन हमारे घर में आ गए। कचोर जो है कुबेर का रिश्तेदार होने के नाते बहुत ही धनी था। कुबेर तो खजांची है ना सारे देवताओं के, तो बहुत धनी है। और अक्सर ऐसे देखा जाता है दुनिया में, भौतिक जगत में, जब कोई भौतिक ऐश्वर्य अधिक मात्रा में किसी व्यक्ति के साथ रहता है तो वो बहुत घमंडी हो जाता है और सोचता है कि सारा जगत जो है उसके भोग के लिए बनाया गया है। तो शंखचूर भी ऐसे ही सोचता था। और जब वो यहाँ आया और उसने देखा कि यहाँ इतनी सारी सुंदर गोपियां हैं और केवल कृष्ण बलराम उनके साथ में है, तो उसको ईर्ष्या हुई कि इनका संग तो मुझे चाहिए और ये लोग यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर आए और सारे गोपियों को एकत्र करके अलग से ले जाने का प्रयास कर रहा था शंखचूर। उस समय गोपियां बड़े पीड़ित होकर चिल्लाने लगी, तो कृष्ण बलराम ने तुरंत दो बड़े बड़े पेड़ उठाए और आक्रमण करने के लिए शंखचूर की ओर बढ़े। उस समय शंखचूर ने देखा कि ये दो बलवान भाई मेरी ओर आ रहे हैं, आक्रमणात्मक भाव से आ रहे हैं, तो यहाँ से निकलना अच्छा है मेरे लिए, यहाँ ठीक नहीं है। तो भाग पड़े वहां से और बलराम वहां रहे और कृष्ण भगवान उनका पीछा करते हुए गए। अब ये शंखचूर का नाम इसलिए हुआ कि उनके चूड़े पर, उनके सर के ऊपर उन्होंने एक शंख के आकार का एक रत्न रखा हुआ था एक आभूषण के रूप में, इसलिए नाम हुआ शंखचूर। तो कृष्ण भगवान ने पीछा किया शंखचूर का। शंखचूर तेजी से भाग रहा था लेकिन जल्दी से जाकर शंखचूर को पकड़ा और बहुत ही बल से एक प्रहार, मुक्का प्रहार किया सर के ऊपर शंखचूर के, और उसी क्षण शंखचूर के प्राण निकल गए शरीर से और वो गिर पड़ा, वहां मर गया, उसका वध हो गया। और फिर श्री कृष्ण ने वो रत्न जो है वो निकाला वहां से और फिर चले आए। तो इस स्थान में ये सब चीजें, ये सब लीलाएं हुई थी। तो आगे हम चलेंगे, भी परिक्रमा जारी रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।